ضیاءُ الحق نے ایک سرکولر جاری کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز اور یونینز، صحافی اور ٹریڈ یونینز، ان کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے.
کہ سیاست نوجوانوں کی ختم نہیں ہوئی، نوجوانوں کو سیاست میں تو استعمال کر رہی تھی، پارٹیاں کر رہی تھیں. وہ کہتی تھی کہ جی ہماری دریاں بچھاؤ، آپ ہمارے لیے نعرے لگاؤ، ٹرولنگ کرو. عمران خان کبھی کروا رہا تھا، کبھی کوئی اور پارٹی کرا رہی تھی.
نہ تو فیسیں پڑھنے دینی ہے نہ وہ، بلکہ یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ نئے کالج، نئے اسکول.
ابھی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے اس کے اندر پاکٹس میں کلیئرٹی ہے، لیکن زیادہ تر اس وقت ریزسٹنس ہے.
السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق، اور یہ وہی سلسلہ ہے جس میں ہم پاکستان کے 75 برس مکمل ہونے پر پاکستان کی فکری، فنی، سیاسی اور سماجی تاریخ کا ایک ریکیپ بھی کر رہے ہیں، اس پر نظر بھی ڈال رہے ہیں اور آج کے حالات بھی زیر بحث لا رہے ہیں. یہ خاص طور پر آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی، میں سمجھتا ہوں، باعث برکت ہے، کیونکہ حسین نقی صاحب اس میں ہمارے مہمان ہیں. اور حسین نقی صاحب، پھر وہی بات، پھر وہی ایک کلیشے کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. لیکن یہ کلیشے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کلیشے تو ہے یہ شعر پڑھنا، مگر کچھ لوگوں پر یہ صادق آتا ہے، اسی لیے ان کی اہمیت ہوتی ہے کلیشیز کی. ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ڈاکٹر عمار علی جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمار علی جان بھی اس وقت پاکستان کے ایک نہایت اہم سیاسی رہنما ہیں، بائیں بازو کی سیاست سے ان کا تعلق ہے. اور یہ پیشے کے اعتبار سے، نقی صاحب تو یعنی صحافی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں. عمار جان جو ہیں یہ اکیڈیمک بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں. عمار کی ابھی تازہ ترین ایک مضامین کا مجموعہ ان کا آیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ انہوں نے پاکستان میں جو طلبہ تحریک کو نئے سرے سے منظم کرنے کا کام لاہور سے شروع کیا اور پھر پورے ملک میں پھیلایا. تو اگر نقی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنے کے بجائے عمار سے کروں.
ضرور.
اور میں آج کی بات کروں، چونکہ یہ طلبہ یکجہتی مارچ ابھی حال ہی میں ہوا ہے ملک بھر میں، کئی شہروں میں ملک کے، اور عمار آپ نے ایک نئے سرے سے، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ واحد ہیں، مگر آپ ان سرکردہ لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس طلبہ تحریک کو پاکستان میں، خاص طور پر طلبہ یونینز کی بحالی کے مسئلے کو اٹھایا اور طلبہ کو منظم کرنے کا کام شروع کیا. تو عمار، آپ یہ جو ریوائیول ہے یا جو ریوائیول کی کوششیں ہیں انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک ضمنی سوال بھی ہے، یہ سوال ہم صحافیوں کی تنظیموں سے بھی پوچھتے ہیں کہ طلبہ کو اس سیاست کا، طلبہ کی اپنی زندگی اور ان کی اپنی تعلیم کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے، اور پھر نقی صاحب سے آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے، وہ یہ کہ طلبہ نے ایک بڑا پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں اور حقوق کی جدوجہد میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، مگر ان کے اپنے اس میں کیا انسینٹیو کیا ہے کہ وہ اس طرف آئیں؟ ہمارے سننے والوں میں بھی چونکہ بہت سے نوجوان اور طلبہ ہوں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی سوال بھی عام ہے.
بالکل، بہت بہت شکریہ حارث بھائی سوال کا بھی. اور یہ ایک تو ثابت کرتا ہے کہ کوئی اکیلا کسی ایک شخص کی نہیں ہے تحریک، یہ ایک پوری روایت ہے. اس کا آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، نقی صاحب بیٹھے ہیں، یہ پچھلے 60-70 سالوں سے تحریک چل رہی ہے، بلکہ اس سے بھی آپ پہلے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں ان میں بہت بڑا نام بھگت سنگھ شہید کا بھی ہے، اور وہ بھی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہی میں سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کئی لوگ، پھر آپ پاکستان موومنٹ، اینٹی کلونیل موومنٹ. تو اہم بات یہ ہے کہ اگر 1980 کی دہائی میں طلبہ تحریک کو ختم کیا گیا، اس کا خاتمہ کیا گیا، اس پہ پابندی لگائی گئی طلبہ یونین پہ، تو 2018-19 میں کیوں اس کی ریبرتھ ہوتی ہے؟ کس کیا وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر 2019 میں کوئی 55 شہروں کے اندر اس طرح سے طلبہ نکلیں، طلبہ طالبات نے پوری ایک ریلیاں نکالیں، تحریک بنائی، گرفتاریاں دیں؟ تو میں کہا اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ پچھلے جو 20-25 سال میں ایک ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی، بلکہ میں اس کہوں گا اینٹی پولیٹکس ایک پورا ایک بیانیہ آیا، कि जी ये सियासत जो है वो आपका काम नहीं है, नौजवानों का, नौजवान जो हैं वो पढ़ाई की तरफ जाएं, करियर का सोचें, वो देखें दंगा फसाद होता है कैंपसेस पे और आप सिर्फ अपना पढ़ाई का सोचें, और अगर आप पढ़ेंगे सही तरह कल को अच्छी नौकरी मिलेगी, कल को आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे, ये एक पूरा बयानिया था जो दिया गया था। अब इसको मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर है मिलिट्राइजेशन भी हुई कैंपसेस की, कोई जी आउटसाइडर नहीं आएगा, हमने पूरा एक चेक रखना है, इंतज़ामिया को मजबूत किया गया, स्टूडेंट्स को कमज़ोर किया गया। होते होते पिछले 25-30 साल में नौजवानों को नज़र ये आया, और ये चीज़ मैं 2016 में जब वापस आया हूँ तो जब पढ़ाना शुरू किया है पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो उस वक्त ये नोटिस करना शुरू किया कि नौजवानों में शदीद बेगानगी थी। यानी आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आप देखें इतने लोग आए हुए थे छोटे छोटे गांव से, कोई वजीरिस्तान से, कोई टोबा टेक सिंह से, कोई सिंध से, लेकिन वो तो बड़ी मेहनत करके आए अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी इस उम्मीद से कि उनको ज़िंदगी में कोई मौका मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें हालात देखे, ना उनको सही पढ़ाई मिल रही थी, ना कोई मुस्तकबिल था, उनको नज़र आया कि वो अपने वालिद साहब वाली नौकरी कर नहीं सकते, ड्राइवर नहीं बन सकते, खेतों में काम नहीं कर सकते, और जो जो फ्यूचर की जो जॉब है जो मार्केट में उसमें उनकी कनेक्शंस नहीं है, तो माजी से भी कट गए, मुस्तकबिल से भी कट गए, और ये जमूद एक है जो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ आया। दूसरी बात ये कि सियासत नौजवानों की ख़त्म नहीं हुई, नौजवानों को सियासत में तो इस्तेमाल कर रही थी, पार्टियां कर रही थी, वो कहती थी कि जी हमारी दरियां बिछाओ, आप हमारे लिए नारे लगाओ, ट्रोलिंग करो, इमरान खान कभी करवा रहा था, कभी कोई और पार्टी करा रही थी। ऐसे में पॉलिटिक्स जो थी वो स्टूडेंट्स की बिल्कुल नहीं हो रही थी, अपनी उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही थी, हरासमेंट के केसेस बहुत फेमस हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, बाकी जगहों पे इसी तरह, जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, फीस बढ़ रही थी और चीज़ें हो रही थी, एक टिपिंग पॉइंट था जिसके अंदर बेरोज़गारी भी थी, बेगानगी भी थी, हरासमेंट भी थी, नस्ल परस्ती भी थी, मुलागर्दी भी थी कैंपसेस पे,
तो ये सब उसके खिलाफ
एक नफरत का इजहार आया है,
उसके खिलाफ एक नफरत का इजहार आया। नकी साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, इससे पहले कि हम माजी में जाएँ, एक ये बताइए कि वजह क्या रही। आपने तो कई मार्शल लॉ भुगताए हैं और मतलब मुख्तलिफ सिविलियन और मार्शल लॉ डिक्टेटर्स की जेलें भी काटी हैं, तो ये वजह क्या थी, यानी ये क्यों इतने खौफजदा हैं तलबा की सियासत से, और ये 1984 में जो फाइनली एक तरह से पाबंदी लगी जियाउल हक के ज़माने में, तो उसकी क्या आपको क्या उसका वजह क्या समझ में आती है कि रियासत क्यों इतनी खायफ है, या जो हमारे मौलमीन हैं असातिज़ा हैं वो खायफ हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन खायफ है, और किस बात से खायफ है?
सबसे ज़्यादा तो स्टेट खायफ है तालिब इल्मों से, और इसका सबूत ये है, उसके सिलसिले में भी मैं जेल में रह चुका हूँ, तो वो यह है कि ज़ियाउल हक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स को की ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस, सहाफ़ी और ट्रेड यूनियंस, इनको इकट्ठा ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कम्बिनेशन बहुत लीथल है और ये नुकसान देगा। और कहा यह गया कि ये जैसे बाहर से मेरे ऊपर आया था, हालांकि ये सारे मुल्क में उन्होंने हर प्रोविंस के होम सेक्रेटरी को भेजा, यहाँ शाह साहब होते थे उस वक्त होम सेक्रेटरी, उनको भी ये था, तो उन्होंने जाहिर है कि इसको डाउन टू टाउन लेवल भी उन्होंने इस लेटर को सर्कुलेट कर दिया, इसकी कॉपीज, कि आपको ये देखना है कि ऐसे ना हो। तो उससे ये पता लगता है कि स्टेट खायफ है, और इसकी तारीख तो बाहर बिल्कुल ही शुरू ही से है कि स्टेट कितनी खायफ थी, इस वास्ते के वायस वो उसमें मैं तारीख में जाना पड़ेगा।
जी जी बिल्कुल
जाऊं मैं
जी जी बिल्कुल जाइए तारीख में, बल्कि मैंने तो आपसे चूंकि बहुत से वाकयात सुने हुए हैं जो इतनी लंबी आपसे वाबस्तगी है, बड़ा एजाज की बात है मेरे लिए, तो वो आप जो बहुत सारे अपने वाइस चांसलर के साथ जो आपके मुकालमे हुए वो भी मुझे बहुत दिलचस्पी है सुनने की।
उससे पहले जो प्रो वाइस चांसलर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैं भी कुछ दिन पढ़ा, वो आ गए थे ए बी हलीम साहब, और वाइस चांसलर पहले बने सिंध यूनिवर्सिटी के, और उनके साथ वहाँ पे और भी कुछ तालिब इल्म भी आए थे, और उन्होंने यूनियन तो ख़त्म नहीं की, यूनियन बनाई, लेकिन वो एक तरीके से पॉकेट ऑर्गेनाइजेशंस में उसको कन्वर्ट करना चाहते थे। हलीम साहब अगरचे انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس کے بھی فاؤنڈرز میں سے تھے یہاں پاکستان میں بھی انڈیا میں. تو انہوں نے یہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے اس وقت شروع میں بالکل ہی پاکستان میں, اتفاق یہ ہے کہ ڈو میڈیکل کالج میں یہاں پر پنڈی سے آئے ڈاکٹر,
ڈو میڈیکل کالج کراچی,
ڈو میڈیکل کالج کراچی ایک طریقے سے انیشیٹ وہاں سے ہوئی ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی, اور ڈی جے سائنس کالج, یہ دو تھے, دو ہی یہ تھے, اور تیسرا ایس ایم کالج تھا لیکن وہ ابھی تک صرف انٹر کالج ہوتا تھا, بعد میں اس میں گریجویشن وغیرہ شامل ہوا. اور ایک دم سے کراچی کی آبادی 300,000 to 1,000,000 ہو گئی تھی تقریباً,
جی
یہ سلسلہ تھا. تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی, ڈی ایس ایف بن چکی تھی, اور ڈی ایس ایف آگے چل کے 50s میں ایپسو بنائی, آل پاکستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, جس میں اس وقت ایسٹ پاکستان کا بھی شمولیت تھی, اور ایپسو کو کراچی کے چیف کمشنر اے ٹی نقوی صاحب نے بین کر دیا. ڈی ایس ایف
چونکہ 50s کی بات ہے,
یہ بالکل 50s کی ابتدائی 50s کی بات ہے, تو یہ انہوں نے کیا تھا. اور این ایس ایف انہوں نے بنائی تھی اے بی حلیم صاحب نے ٹو کاؤنٹر ڈی ایس ایف. سرور ابھی بینا تھی یہاں پہ, تو اس کے والد ڈاکٹر سرور یہ پریسیڈنٹ تھے. یہ اس وقت دو لوگ زندہ ہیں اس میں, ڈاکٹر ہارون احمد جو سائیکیٹرسٹ ہیں بڑے پروفیسر تھے وہاں, اور ادیب الحسن رضوی, یہ اس کے ڈی ایس ایف کے لیڈرز میں سے تھے,
جو ایس آئی یو ٹی کے اس وقت سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ جو ان کی شہرت ہے, ادیب الحسن رضوی
یہ اس وقت تھے. اور رحمان علی ہاشمی انتقال کر گئے جنا پوسٹ گریجویٹ, جن لوگوں نے شروع کیا یہاں پہ, اور بلڈ کا بلڈ بینک وغیرہ یہ وہاں پہ شروع کیا تھا انہوں نے. تو ان لوگوں نے ڈی ایس ایف بنائی تھی, اور اس کو آرگنائزیشن اس طریقے سے, وہ کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ صرف دو انسٹیٹیوشن تھے جس میں کالج کے اب کتنے لڑکے پڑھ سکتے. کراچی یونیورسٹی جو تھی وہ ایک لڑکیوں کا مڈل اسکول تھا, اس کے اوپر قبضہ کیا تھا, بلکہ باقاعدہ مڈل اسکول لڑکیوں کا, ہندو لڑکیوں کے ایک ٹرسٹ اسکول تھا, اس پہ قبضہ کر لیا, اور اس کے ہال میں کلاسز ہوتے تھے. شبلی ابھی جو مر گیا لندن میں, یہ اس وقت وہاں پڑھا تھا, قادری,
صبغت
اللہ قادری گھریلو نام تھا شبلی,
اچھا
شبلی اس کو کہتے تھے. تو یہ وہاں پہ سیکرٹری ہوا تھا, اور شمیم وائس پریسیڈنٹ ہوئے, اس سے پہلے الیگیرینز جو تھے وہ ان کا. اس وقت گروپنگز عجیب قسم کی تھی, اس میں تھا کہ الہ آباد گروپ ہے, یہ علی گڑھ گروپ ہے, یہ لکھنؤ گروپ ہے,
جو یونیورسٹی سے وہاں سے آئے تھے,
اور سندھ گروپ اس میں بالکل غائب تھا, لیکن ڈی جے کالج میں تھا, سندھ اسٹوڈنٹس تھے, اور شیخ ایک لڑکا ہوتا تھا جو ان کے لیڈر. بہرحال این ایس ایف انہوں نے بنائی ٹو کاؤنٹر ڈی ایس ایف اینڈ ایپسو, ہمارے اے بی اے حلیم صاحب نے, اور اس میں ایلیٹ پریس کے جو مالک ہیں اور تبت اسنو, یہ دونوں یہ جو لڑکے تھے یہ ان کے, یہ اس کے ایک سیکرٹری تھا, ایک وائس پریسیڈنٹ تھا. اب ڈی ایس ایف بین ہو گئی, ڈی ایس ایف جب بین ہوئی تو ظاہر ہے این ایس ایف رہ گئی. این ایس ایف کے یہ دونوں لیڈرز جو تھے یہ ظاہر ہے پاس آؤٹ کر رہے تھے, تو ہمیں یاد ہے کہ شبلی تھا, برکات ابوالبرکات پڑھاتے تھے وہاں انگلینڈ میں بھی, میرا خیال اکانومکس لندن اسکول اکانومکس میں, یہ شمیم, مطلب اس طریقے سے بہت سارے پروگریس, ودود, محبوب علی, رحمان علی, یہ ابھی رحمان علی ہاشمی جو تھے, یہ ایک طریقے سے اسٹوڈنٹ لیڈرز میں سے انٹریکٹ کرتے رہتے تھے, تو ہم لوگ وہاں تھے. تو ان دونوں لڑکوں نے یہ کہا کہ یہ 56 ہو گیا اب, اور انویژن ہو گیا اس کے اوپر نہر سوئز پہ, تو انہوں نے ہم لوگوں کو شامل کر لیا تھا, ودود, شبلی یعنی صفت اللہ قادری, برکات اور میں, ہم چار لوگ جو تھے وہ انہوں نے ہمیں ایگزیکٹو میں لے لیا تھا این ایس ایف کی. تو ہم نے کہا کہ ساتھ میں یہ ہو گیا کہ جبل پور کے اوپر بھی مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا, لومبا, پیٹرس لومبا, اس سے پہلے ان کا بعد میں واقعہ ہوا, لیکن
جی
مطلب افریقہ میں بھی موومنٹ چل رہا تھا, تو کئی جگہ کے اوپر ایسی ایکٹیویٹیز تھیں, اور ہم لوگوں کو انہوں نے این ایس ایف میں اس لیے شامل کر لیا کہ اب स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, आपकी तो ख़त्म हो गई ऑर्गेनाइजेशन,
तो आप इसमें आ
जाएं। और हम लोग जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मतलब यानी ये कुछ
कम रहे,
कम रेडिकल, या यूँ समझिए कि उन्होंने कहा कि ये शरीफ जो लोग हैं तो इनको उसमें शामिल कर लिया। बहरहाल वो ये हुआ कि सबसे पहला एक्टिविटी तो यही हुई कि नहर सुएज के ऊपर हमला हुआ है, तो हम लोगों ने कहा कि इसके ऊपर, बल्कि तिब्बत स्नो एक इतने इतने बड़े कमरे में थी, सारा यहीं से दो मशीनें लगी थी, एक पे पाउडर बनता था, एक पे क्रीम बनती थी, और इधर हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही जैसे इस वक्त सोफों में बैठे हैं। और हम लोगों ने फैसला किया कि जी हम कल जुलूस निकालें इसके ख़िलाफ़, नहर सुएज पे हमले के ख़िलाफ़, मुसलमानों के उसके ऊपर अटैक हो गया, एंग्लो अमेरिकन और सब ज़ाहिर है कि लेफ्ट के लोग थे ये, तो वो जुलूस जो था उसमें हज़ारों लोग पब्लिक में शामिल हो गए। जहांगीर पार्क में हम लोगों ने जलसा किया तो उसमें हज़ारों लोग मौजूद थे वहाँ पर। तो ये भी हुआ था, क्योंकि उससे पहले 56 का जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ये भी वहाँ पे उसका इजलास हुआ था, तो हमारा जलसा उससे भी बड़ा हो गया और लोगों का जुलूस निकला उसके ऊपर, उनकी बेवकूफ़ी से उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। और दूसरी बात ये हुई कि उस वक्त मेरा ख्याल है कि ये भी कोई वज़ीर थे, सोहरावर्दी साहब, या तो प्राइम मिनिस्टर थे, या मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे लेकिन पहले भी थे वो कैबिनेट में। तो वहाँ पे जो गर्ल्स कांग्रेस का था ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वदूद की छोटी बहन थी, शफ़ी एक साहब थे स्टूडेंट लीडर, उनकी बेगम थी, ये सब लोग उसके ऊपर उस गर्ल्स कांग्रेस की मेंबर्स थी। इन ये लोग अपना जुलूस लेके वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि हमारे लोगों को मारा गया है, ये हुआ है। तो वो एक तरीके से एकदम से NSF और गर्ल्स कांग्रेस जो थी, दीज बिकेम पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, और NSF का जो कैरेक्टर था कि ये बनाई किसी काम के लिए गई थी, और बिल्कुल ही कह,
तो आप लोगों ने एक तरह से उसमें घुसबैठिए का काम किया, DSF से आप NSF में गए और उस पर कब्जा कर लिया।
हाँ ये ये तो उन लोगों ने।
अच्छा नकी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, क्योंकि अब 60 की दहाई पे फिर आएंगे अयूब खान के दौर पे। लेकिन अमार, यहां से जो एक सवाल पैदा होता है वो बहुत दिलचस्प है, वो ये कि नकी साहब तो पैट्रिस लुमांबा के लिए भी जुलूस निकाल रहे हैं, और नकी साहब जो हैं या उस दौर में जबलपुर में मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो उस पर भी हम रिएक्ट कर रहे हैं, सुएज कैनाल की नेचुरलाइजेशन और उससे मुताल्लिक जो पूरा किस्सा है जमाल अब्दुल नासिर का, उस पर भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स, इन्होंने कराची का जिक्र किया लेकिन यही सूरत हाल कमो बेश लाहौर में और दीगर शहरों में थी, तो ये अब क्या है? अब तो आप बांग्लादेश और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के तालिब इल्मों के साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते, तो इस पे जरा मतलब इसे हम कैसे यानी रिजॉल्व कैसे किया जाए, बात आगे कैसे बढ़े, और ये जो पूरी एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी थी यानी वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स की या स्टूडेंट मूवमेंट्स की, वो कहाँ चली गई?
अभी भी है, देखें आप अभी फ्रांस के ऊपर बहुत लोगों ने मुजाहरे किए हैं, उसमें तालिबे भी बहुत आगे आगे थे, वो जो गुस्ताखी का मामला था, और वाहिद पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हुआ। और बाय द वे लुमुम्बा के लिए भी बरे सगीर में पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से था जहां पे एक तहरीक बन गई, तो इतना ज़्यादा एक इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मौजूद थी। अभी जो पिछले 30-40 सालों में जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास सर्कल्स हैं उसको तो बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा, ये कहा गया है कि बस अपना सोचो, आगे निकलो जिंदगी में, किसी और चीज के साथ ना सोचो। और उसमें नुकसान ये होता है कि जब आप पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहे होते तो पॉलिटिक्स तो आपके बारे में सोच रही होती है और फैसले कर रही होती है, तो आप इग्नोर कर सकते हो पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स किसी को इग्नोर नहीं करती। हुआ क्या, इस सारे अरसे में जो ग्लोबल इमेजिनेशन आई है हमारी, वो अर्तुगरुल टाइप ही आई है, ठीक है, वो उसके अंदर एक पिछले 30-40 सालों से एक ग्लोबल जिहाद का इस्लामी प्रोजेक्ट की बात हुई है, जो जगह जगह जो एक कॉमन सेंस है एक इसी नौजवान की, आप उसे थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे तो वो निकल यही आएगा कि देखें जी मुस्लिम दुनिया, उम्मत मुसलमान, ये वो। आई थिंक बहुत अरसे बाद पिछले 4-5 सालों में, मैं इसलिए पुरुद हूँ कि वो चीज़ जो है वो भी टूट, उसका असर टूटा है, और पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद एक डिस्कशंस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जो JNU में तहरीक चली मोदी के खिलाफ,
जवाहरलाल नेहरू
यूनिवर्सिटी में, उसका कन्हैया कुमार के आपको पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में फैंस मिल जाएंगे, बड़ी बात है, ठीक है, शैला रशीद के। फिर
तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें अमार सोशल मीडिया का भी एक दखल है, उसने भी یعنی جو ریزسٹنس کے مختلف جگہ مزاحمت کے جو نیوکلیس تھے
وہ لوگوں تک پہنچائے ہیں
اور ان کو ریوائیو کیا ہے.
اور جو بحران آتا ہے نا, یہ ایک ہماری تو ریاست کا ایک پروجیکٹ ہے میموری کو ریز کرنے کا, کہ آپ نے بالکل حافظہ لوگوں سے چھین لینا ہے. لیکن جب جو بحران آتا ہے تو یہ سارا جو ماضی ہے یہ بھی واپس لوگ کنیکٹ کرتے ہیں اس سے. تو ابھی آپ دیکھیں گے نقی صاحب سے سارے اسٹوڈنٹ لیڈر ملے ہیں 2019 کی مارچ کے, آپ کو یاد ہوگا سب آپ کے پاس آئے تھے ملے تھے. اب وہ پھر راستہ خود ہی بنا لیتا ہے انسان جب ایک بحران میں ہو. آپ اپنے ماضی سے, آپ نے اس ماضی کو تو ریجیکٹ کر دیا جو ریاست نے آپ کو دیا, کیونکہ اس نے آپ کو حال بھی گندا دیا ہے, مستقبل بھی کوئی آپ کو اچھا ہی لگ رہا. پھر آپ واپس جڑو گے اور نوجوان جڑیں گے پاکستان کی اپنی تاریخ میں بھی, اسی جو بھی موومنٹس بتا رہے تھے.
تو آپ کو اس کے امکانات روشن نظر آتے ہیں. میں نقی صاحب کی طرف جاتا ہوں اور پھر دوبارہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے میں یہیں سے شروع کروں گا کہ نظر نہ بھی آئے تو پر امید رہنا چاہیے. میرا خیال ہے بہت عام نقطہ ہے. نقی صاحب ذرا آپ 1960 کی دہائی میں آ جائیے. ایک تو 1953 میں میرے خیال ہے کوئی قتل و خونریزی بھی ہوئی تھی, طالب علم مارے گئے تھے, اس کا ذرا تذکرہ کر دیجئے.
ہوئی اس وقت تھی کیونکہ ڈیمانڈس تو پہلے سے تھیں. جو میں نے جیسے بتایا کہ یونیورسٹی نہیں تھی کہاں, ایک اس اسکول میں قائم کی گئی, کالجز نہیں تھے, اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ کوئی بھرتی نہیں کر سکتا تھا, اور امپلائمنٹ البتہ زیادہ تھی اس وقت کیونکہ بالکل ہی سیکرٹریٹ فیڈرل بھی بن گیا تھا وہاں پر, اور ظاہر سندھ کا بھی تھا, اور اے جی پی آر کا دفتر تھا, اور اے جی پی آر کے دفتر میں آپ اپنا نام لکھا دیتے اور آپ کو آپ سینئر کلرک ہو جاتے یا اسسٹنٹ ہو جاتے یا کلرک ہو جاتے, تو آپ کو اتنی تنخواہ ملنے لگی تھی کہ آپ یونیورسٹی کی کالج کی فیس ادا کر سکیں, اور آپ دن میں کوئی ایک کبھی کسی وقت حاضری لگانے چلے جائیں, ورنہ کسی دوست کو کہہ دیں کہ وہ جی پی آر میں آپ کی حاضری لگا دے. تو یہ اویلیبلٹی تھی کراچی میں جو اور شہروں میں نہیں تھی. اور شہروں میں یعنی پنڈی کا میں نے کہا جیسے ڈاکٹر ایوب, اس واسطے ڈان میڈیکل کالج میں وہ ون آف دی فاؤنڈرز آف ڈی ایس ایف تھے. اسی طریقے سے کچھ لوگ تو باہر چلے گئے, ڈاکٹر غالب وغیرہ, علی جی وغیرہ, اور بھی بہت سارے لوگ جو بعد میں, نسیم جو ایڈیٹر تھے ہیرلڈ کے, جو پہلا اسٹوڈنٹ کا اخبار نکلا, جو بعد میں واپس آ گئے تھے پاکستان میں, پڑھایا بھی میرا خیال ہے ایل ایس سی میں بھی پڑھایا یا کہیں. تو یہ لوگ اس وقت کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. 60s میں ایسا تھا کہ ایوب خان جب آئے تو انہوں نے سیاسی پارٹیز کے اوپر پابندی لگا دی. اب میں جیسے بتایا کہ 56 میں این ایس ایف لیفٹ ہو گئی تھی, تو این ایس ایف واز آلسو ٹریٹڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اس کو بھی ایک سیاسی آرگنائزیشن کے طور پہ بند کر دیا. ہمارا ایک چھوٹا سا دفتر تھا مولوی مسافر خان پہ, اس کا آدھا ایک دکان لے لی تھی کرائے پہ, تو وہاں پہ قریب تھے سب لوگ, تو وہ اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی. لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کو ریوائیو کیا انہوں نے, اور پولیٹکس ریوائیو کی اور اپنا لوکل گورنمنٹ کا الیکشنز وغیرہ اناؤنس کیا, تو ظاہر ہے این ایس ایف بھی کے اوپر سے بھی پابندی ہٹ گئی. ہم نے تمام سارے شہر میں پھر ہر علاقے میں یعنی جا کے جلسے کیے, جلوس کیے, اور ڈیمانڈز جو اسٹوڈنٹس کی تھیں وہ یعنی اس کو ریز کیا. لیکن وہ کنٹینیوٹی تھی ایک طریقے سے 53 کے اس موومنٹ کی. 53 میں یہ حالت تھی کہ کوئی یعنی بہت فیس دینے کے لیے تو تھی, فیس اتنی کم تھی, یونیورسٹی کی فیس 14 روپے تھی جب ہم بھی پڑھ رہے تھے. اس وقت بھی ہم لوگوں نے بڑھنے ہی نہیں دی. 53 کے بعد یونیورسٹی اور کالجز کی فیس نہیں بڑھی تھی, اور بہت سارے اسکول جو تھے وہ نائٹ اسکول پرائیویٹ کھل گئے, بہت سارے پرائیویٹ اسکول دن میں بھی کھل گئے, ان کو ریکگنیشن مل گئی, اور اس میں بھی امپلائمنٹ تھی. مثلا میں نے ایک اسکول میں پڑھایا 55 روپے پہ 5 پیریڈ,
55 روپے ماہوار
پہ 5 پیریڈ روز.
اچھا نقی صاحب وہ بتائیے نا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو کراچی سے نکال دیا.
اچھا وہ ہمیں کراچی سے نہیں نکال دیا گیا, جب یہ 60 میں یہ کھلا دوبارہ سے پولیٹیکل وہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی, تو ظاہر ہے کہ ریوائیول ہو گیا جیسے
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا.
اچھا اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس یونین کا بھی ریوائیول ہو گیا. اب اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشنز ہوئے, इलेक्शन हुए और मसलन इस्लामिया कॉलेज में फतेह आप जीते, एस एम कॉलेज में मेराज जीता, कराची यूनिवर्सिटी में हमारी टीम जीती उस वक्त की, जो नफीस गजनवी इंतकाल कर गए और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन किया, उसमें जो इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से चले आ रहे थे और इनकी कैबिनेट में भी थे लियाकत अली खान की, और एजुकेशन के फिर वो मिनिस्टर वगैरह बनाए गए जो वहाँ पढ़ाते थे जहाँ दिल्ली में, तो वो वाइस चांसलर थे। उन्होंने कहा कि ये तो बराह रास्त इलेक्शन ठीक नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और उन्होंने कहा कि पहले काउंसिल इलेक्ट होगी और वो इलेक्ट करेगी अपने वो ऑफिस बेयरर्स को,
प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कंट्रोल करना चाह रहे हैं।
तो बहरहाल वो भी
कॉलेज बना दिया इलेक्टोरल कॉलेज के,
तो उसमें एक तो बैन था लड़का, लेकिन सेक्रेटरी नफीस गजनवी हुए और जॉइंट सेक्रेटरी इसी तरीके से, तो वो लोग जो थे वो ज़रा इनलाइटेंड लोग थे उन्होंने, लेकिन हमने उनको इस बात पर राज़ी किया कि तुम लोग ख़ुद ये मूव करो कि इलेक्शन जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे और उसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा ले सकती थी। एनएसएफ ने पहली बार कराची यूनिवर्सिटी में सपोर्ट ओपनली किया, जाहिर है एनएसएफ ही से ताल्लुक़ थे, जब इस्लामिया कॉलेज में ये हो गए थे और वहाँ तो आईसीबी बनाई, इंटर कॉलेजेड बॉडी उस वक्त बनाई गई, उसमें फतेहाब सदर थे और ये मिराज
फतेहाब अली खान और मिराज मोहम्मद खान,
ये दोनों इलेक्ट हो गए थे और ये आईसीबी के लीडर थे, और इन्होंने सबसे पहले ये कॉल दी कि ये जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है इसको ख़त्म किया जाए, और फीसें जो हैं वो बढ़ाने का मूव था, एक ये मूव था, वो जो शरीफ कमीशन की रिपोर्ट आई थी
जी
उसमें ये कहा गया था, और बहुत ही स्ट्यूपिड बात थी कि अगर आपने एक अच्छी शर्ट ख़रीदनी है मसलन एरो की तो आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, लिहाजा अगर आपने अच्छी तालीम हासिल करनी है तो आप अच्छे पैसे दें। अब तो ये बाकायदा इन्फोर्स हो गया है, उस वक्त ये हमने इन्फोर्स नहीं उन्हें दिया, इस वास्ते कि हम लोगों ने मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने, हम का मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने कहा कि ये तो नहीं हो सकता और ना फीसें बढ़ेंगी ना किसी को, नए कॉलेजेस खोलो और ज़बरदस्ती भी खुलवाए, लेकिन कुछ ऐसे थे जैसे राजा साहब महमूदाबाद ने सिराजुद्दौला कॉलेज खोला तो उसमें अनलिमिटेड था कि कितनी लड़के भर्ती कर लिए जाएं, इस्लामिया कॉलेज एम कुरैशी जो कुरैशी उधारा कहलाते थे उसको, तो वो इस तरीके के बहुत सारे कासिम उधारा और कुरैशी ये लोग उधार पे गुजारा करते थे, इन लोगों ने बिल्डिंगें किराए पे ली
और कॉलेज खोले।
हाँ, और डॉक्टर अपने जौहर हुसैन के वालिद
करार साहब
हाँ प्रोफेसर करार हुसैन उसके, वो कुरैशी में कम से कम ये थी कि वो कहता था कि मैं कॉलेज में नहीं जा सकता, वहाँ इतने आलिम लोग हैं मुझे उनसे डर लगता है, अगर वो नीचे उतर रहे होते थे तो वो भाग जाता था, अब तो वो ऑर्डर करेगा जो एम्प्लायर है शायद आपको, लेकिन बहरहाल उस वक्त ऐसा था कि ये कॉलेज बहुत पॉपुलर हो गए। अब हबीब जालिब भी पढ़ता था फर्स्ट ईयर में, उस वक्त की बात है, और उस वक्त उसने
इस्लामिया कॉलेज कराची में
ये शुरू किया था, इसके वालिद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में थे पब्लिकेशन में
जी,
इनके बड़े भाई
मुश्ताक मुबारक साहब
छोटा भाई भी किसी महकमे में मुलाजिम था। बहरहाल उस वक्त ये हुआ कि ये डिमांड जो थी इसके लिए कि इसके लिए जुलूस निकाला जाए, तो जुलूस मतलब निकाला गया, जुलूस पहला निकाला गया उसके ऊपर, उसको बहरहाल थोड़ी दूर जाने की इजाज़त दी गई और जाहिर है कि वो ये नारे वारे लगाए और उसके बाद वहाँ पे आके ख़त्म हो गया। जो मेन मसला इस वक्त यानी इसमें 3 इयर्स डिग्री कोर्स का साथ साथ फिर तमाम कॉलेजेस में तमाम स्कूल्स में हम लोग गए और हमने बताया कि ये चूँकि हुकूमत की पॉलिसी आई है और इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं होने देना, ना तो फीसें पढ़ने देनी है ना वो, बल्कि ये डिमांड किया जाए कि नए कॉलेज नए स्कूल, लड़कियों के कॉलेज, लड़कियों के लिए भी यूनिवर्सिटी, जाहिर है उस वक्त की जो सोशल कंडीशंस थी वो ऐसी थी, हम लोगों को बाकायदा जब कैंपस में शिफ्ट हुए फ्रॉम सिटी, तो बहुत सारे पंजाबी सौदागरान दिल्ली की फैमिलीज़ ने लड़कियों को कहा, जो अपने फ़र्ज कीजिए कोई फर्स्ट ईयर में बीए के पार्ट वन में पढ़ रही थी, कोई तीन साल वो भी था वैसा कोर्स जो ऑनर्स कोर्स था
जी,
वो भी था, तो वो उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ नहीं भेज सकते, इतना दूर है। हम लोग घरों पे गए बाकायदा, जो कई कई लोग मिल के, और हर एक को उनके वालदेन को ये अश्योर किया कि हम लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जेल से लेके और यूनिवर्सिटी तक सिर्फ मैदान था, सारा खुला हुआ था और कोई
जी।
अच्छा, मेरे मामू थे उस वक्त RTC में सेक्रेटरी और रोड ट्रांसपोर्ट, तो मैंने उनको जाके कहा कि कल से 12 बसें 12 पॉइंट से यूनिवर्सिटी के लिए चलेंगी, क्योंकि कैंपस शिफ्ट हो गया है। तो उनका, हमारे पास तो टोटल इतनी, हम तो नहीं चला सकते। मैं कहा फिर कोई भी बस नहीं चलेगी। रात में उन्होंने मुमानी से कहा कि देखो ये मुझे थ्रेट करके आया। मैं कहा थ्रेट नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है, अगर कल से 12 पॉइंट से नहीं चली बसें तो आपकी कोई बस शहर में नहीं चलेगी।
ऐसा होना चाहिए ना लीडर।
तो वो ऐसे ही हुआ।
अच्छा, तो फिर नहीं, वो बताइए ना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो आपसे मुकालमा जो
अच्छा
हुआ।
वो ये हुआ कि उन्होंने, वो ये चाह रहे थे, यानी ये IH कुरैशी ने ही किया बड़े ड्रामा अंदाज में। वो उससे पहले हमारे एक साहब थे, मेरा ख्याल है बशीर साहब, जो यहाँ पे ये जो था क्या नाम है ट्रेनिंग कॉलेज, इसके वो थे, और वो वाइस चांसलर बनाए गए, और उनको फिर हटा, यानी उनको जगह के ऊपर एम को, इनको लाया गया, अभी क्या नाम बताया मैंने,
इश्तियाक हुसैन कुरैशी को।
तो इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने हम सब लोगों को बुलाया और बहुत आंसुओं से हमसे सिंपैथाइज किया, लेकिन साथ साथ हमें ये पता चला असिस्टेंट डायरेक्टर जो असिस्टेंट वहाँ पे थे, क्या रजिस्ट्रार, उनसे ये पता चला कि तुम सब लोगों को इन्होंने फारिग कर देना है यहाँ से, तो मतलब इनको पता है कि कौन लोग यहाँ पे यानी लाए हैं इसको, कैंपस को हम लोगों ने शिफ्ट कराया। उसमें रजिस्ट्रार थे बहादुर रहमान खान साहब, उन्होंने सपोर्ट किया था हम लोगों को कि हाँ ठीक है कैंपस वहाँ चला जाए अब, और एक बिल्डिंग ही बनी थी अभी, तो हमने कहा कि शुरू होगा जब वहाँ जाएंगे तो फिर और भी बनेगी, यहाँ तो अब जगह ही नहीं थी कहीं। तो बहरहाल उनसे इश्तियाक हुसैन कुरैशी से ये बात हुई कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन साथ साथ ये हुआ कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके यानी स्टूडेंट लीडर्स को एक्सटेंड कराने का ऑर्डर दिलवा दिया। तो पहली खेप में तो काफ़ी लोग जो थे वो पकड़े भी गए थे, और मतलब जुलूस वलूस चूँकि इसके तीन सालों डिग्री कोर्स के खिलाफ निकलते रहे थे छोटे छोटे, तो काफ़ी लोगों को एक साथ उन्होंने पकड़ लिया था। वो इवन जबलपुर मूवमेंट में तो कोई 80 लड़के थे जो कराची के जेल में गए, उसका नतीजा बहरहाल ये हुआ कि वो सब एक तरीके से रिकग्नाइज्ड स्टूडेंट लीडर्स हो गए। तो अब ये लोग वहाँ से निकले तो फिर उनको 10 लड़कों को पहले एक्सटेंड कर दिया, जिसमें फतेहाब मेराज और बहुत सारे लोग थे। ये लोग मुख्तलिफ शहरों में गए, मसलन कायम खानी हॉस्टल है आपके हैदराबाद में, वहाँ पे फतेहाब कायम खानी थे, तो उनकी वजह से कुछ लोग ठहरे, कोई कहीं ठहरा, किसी को कम्युनिस्ट पार्टी के किसी दोस्त ने कोई अपने घर ले गया, हत्ता कि कुछ लोग वहाँ से फिर साहिवाल आ गए। साहिवाल में चूँकि मेहंदी हसन का छोटा भाई अस्करी ये स्टूडेंट लीडर उस वक्त था, तो वो उसने कुछ लोगों को ठहरा लिया, फतेहाब और वगैरह, खुर्रम मिर्ज़ा, इस तरीके से सईद हसन
जी।
फिर सैफ खालिद थे फैसलाबाद में
जी,
उन्होंने जो उसका रूही का ससुरे हमारे दोस्त
जी,
उनके घर लोग ठहरे, महीनों रहे, मतलब महीनों क्या सालों रहे मुख्तलिफ जगह।
आप उसी दौरान लाहौर आ गए?
जी, हम उस दौरान 58 में मैं यहाँ आया, क्योंकि मेरे बहनोई जो था, मेरा कज़न था और मैं तो अकेला अपनी बहन के साथ आ गया था, मेरे कज़न के साथ मेरी बहन की शादी हो गई थी, वरना मैं तो वहाँ था। और मतलब मुझे लगा यहाँ मैं ज़्यादा आज़ाद हूँ, वहाँ सनसेट पे घर जाना पड़ता था। ये तो हमें पता चला कि आज़ादी क्या होती है। बारह ये लोग जो थे ये सब पकड़े गए, और इन लोगों को इन्होंने बहरहाल मूवमेंट वो चलाई और इन लोगों को सज़ा हो गई, जौहर हुसैन को मसलन, फतेह आपको, इन सब लोगों को सज़ा हो गई
जी।
और हार्ड लेबर सी क्लास, मुझे याद है कि उसके तो बिल्कुल वो जो थे हाथों पे छाले पड़ गए थे जौहर के,
उसके जौहर हुसैन साहब जो करार हुसैन साहब के साथ,
फतेह आब अली खान, और मैंने तो लिखवाया भी और मासूमा ने भी किताब में अपनी लिख दिया है उसको। तो इन दोनों को इतना मारा था, इनको 76 हवालात से ले गए फतेह आब मेराज, कई और लड़कों को, लेकिन इन दोनों को उल्टा लिटा के 76 से मारा, तो इनके बटक्स जो थे ये काले हो गए थे फतेह आब और मेराज के। और हम 30 तकरीबन एक उसमें हवालात में प्रीडी थाने के जो थे 30 वो थे, लेकिन 30 डुल्लू में चाय मिलती थी, तो सब लोग जो थे वो बारी बारी इनके बटक्स को उससे
सेकते थे। तो
और ये सीधे सो नहीं सकते थे, उल्टे सो सकते थे। उसमें एक एसपी आ गए नए कोई रिक्रूटेड, उन्होंने आके कोई मिराज मोहम्मद खान को बुलाया और वो कुछ कोई अभी 4 लेटर वर्ड कोई गाली उन्होंने दे दी, मिराज ने उनको अंदर से ही मुक्का मार दिया, उसके ये सब फट गया, लेकिन उनकी नाक से खून बहने।
अच्छा अब लाहौर आ जाए नकी साहब, चूंकि हमें वक्त की वक्त का थोड़ा सा वो है सिलसिला। अच्छा
अब इश्तियाक हुसैन कुरैशी के का मसला ये हुआ कि इश्तियाक हुसैन कुरैशी चाहते थे कि मैं किसी तरीके से इलेक्शन ना लड़ सकूं।
अच्छा
तो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि उसने एमए प्रीवियस किया हो, हम लोग सब उससे पहले एक्सटेंड हो चुके थे, तो हमने कहा कि मतलब हम तो इलेक्ट नहीं हो सकते थे, नेक्स्ट ईयर बार आ रहा हम इलेक्ट हो सकते थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि हमारा इलेक्शन हो गया, हम जीत गए इलेक्शन प्रेसिडेंट का, और हमारे पूरे जो वो थी वो सारी जीत गई, काउंसिल में भी हमारे
पूरी कैबिनेट आ गई,
स्पीकर भी हमारा, उनकी काउंसिल भी हम लोगों ने रहने दी थी, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन में हम लोग सब जीत गए और वो स्पीकर भी हमारा हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी का जो इलेक्शन है इस फॉर्म में ये सही नहीं हुआ है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करवाए उन्होंने और इलेक्शन रद्द कर दिया। तो मैंने उनसे जाके कहा इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब से, मैंने कहा आप कुछ भी कर लें, आपने इस्लामिक स्टडीज़ में कहा कि ये शिया है, अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट का में कहा कि ये कम्युनिस्ट है, तो आप पहले ये तय कर लें। वैसे मैं शिया कम्युनिस्ट हूँ, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप बाहर गएंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये तो आपको लोगों को पता ही है हमारे खिलाफ है, लिहाजा ऐसी इल्ज़ाम। मुझे लड़कियों ने पूछा कि नकी भाई आप क्या अल्लाह ताला को नहीं मानते, आप नमाज नहीं पढ़ते, मैं कहा तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ, उनका नहीं हमें तो नहीं ऐसा लगता क्या, क्योंकि सारों के मुआशकों का मैं मतलब वो तो
राजदार
काफी।
इसमें मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया नकी साहब, आशिक हूँ पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे।
तो बहुत सारे जो वाकई
नकी साहब मैं भी आपसे गुजारिश है अब वो लाहौर आ जाइए ना, जरा लाहौर में बताइए क्या हुआ, 60 और 70।
उन्होंने हमें
बताइए
इसके बावजूद उन्होंने वो किया और मैं फिर इलेक्ट हो गया, और मैंने जब उनका खुतबा सदारत पढ़ा तो उन्होंने मार्च में जाके मुझे रेस्टिकेट कर दिया। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में कुछ गड़बड़ की, यानी उनका झगड़ा हो गया था, जिसमें ताहिर मोहम्मद खान जो मेरी कैबिनेट में भी थे, मुझसे पहले फतेह आप के भी कैबिनेट में थे, फिर भुट्टो के वाइस चेयरमैन भी हुए सेनेट के, उनके वजीर भी रहे, ये ताहिर मोहम्मद खान हमारी कैबिनेट से निकले थे, तो इन लोगों के हक में हमने सपोर्ट किया था, तो मुझे मार्च में रेस्टिकेट कर दिया। उनका ये ख्याल था कि एक साल गड़बड़।
ये मार्च कौन सा सन है?
ये 62 होगा मेरा ख्याल है, 62।
अच्छा, लेकिन 58 में आप पहली बार लाहौर आए, और फिर 62, 63 में यहाँ मुस्तकिल।
58 में से 60 तक मैं यहाँ पढ़ा, इस्लामिक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया,
यहाँ से पढ़ के फिर वापस गए,
फिर वहाँ वापस गए क्योंकि हमारी बहन का बहनोई का ट्रांसफर हो गया तो इसलिए हम यहाँ आए। और यहाँ भी मैं इस्लामिया कॉलेज में सेक्रेटरी हुआ था। यहाँ भी हमीद अहमद ख़ान ने मुझसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो अंजुमन का हेड क्लर्क है उस वो ज़्यादा उसकी पावर्स हैं या प्रिंसिपल कॉलेज की। मैंने कहा ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल कॉलेज की, उनका नहीं फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल हेड क्लर्क की पावर्स हैं। अब हमीद अहमद ख़ान मुझसे पूछ रहे हैं कि हुसैन नकी साहब आप ये बताएं मैं आपको रस्टिकेट कर दूं या खुद इस्तीफा दे दूं। मैं आप बराए मेहरबानी मुझे रस्टिकेट कर दे, आपकी इस कॉलेज को बहुत ज़रूरत रहेगी। और वो वाकई रही तो वैसे तो वहाँ इश्तियाक हुसैन कुरैशी उनको जाके मैंने मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप अगर आपको गलत फहमी है कि कोई हड़ताल होगी तो कोई हड़ताल नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई क्लास नहीं ख़त्म होने दिया, कोई टीचर ऐसा नहीं था यूनिवर्सिटी का जो क्लास छोड़ सके जब तक कोई वैलिड रीज़न ना हो उसके लिए।
जी
और हमने कहा कि चूंकि इनके माँ बाप जो हैं बड़ी मुश्किल से कोई क्लर्क है कोई कुछ है कि उसमें इसकी फीस देते हैं और इसको आने जाने का किराया भी देते हैं, तो ये कैसे पढ़ेगा आगे, एक साल और अगर इसका बर्बाद हो गया। तो आप देखें उस पीरियड में जब स्टूडेंट्स यूनियन थी तो कराची में कभी भी 2 साल का जो कोर्स था वो 3 साल में नहीं हुआ, मुस्तकिल ये हुआ।
ये बात बिल्कुल ठीक है।
फिर 4-4 साल इम्तिहान।
जी जी मेरा मेरी 4 साल की डिग्री जो है वो 6 बरस में हुई है
जी,
क्योंकि मैं ज़ियाउल्लाह के जमाने में और फिर बेनजीर बाद में।
हमने तो ये होने नहीं दिया कि ये नहीं हो सकता।
ये बड़ी दिलचस्प बात है अमार, इस पे एक आखिरी सवाल आपसे क्योंकि बहुत ही हमारी दिलचस्प और मजेदार गुफ्तगु रही। आपने थोड़ा सा मुतालिया भी किया है पिछले अदवार का और देखा है कि क्या हुआ, तो 70 की दहाई की सूरत हाल थोड़ी सी मैं नकी साहब से पूछूंगा, मगर आप जब आज की जो ये पूरी एक एक उबाल सा हमें नज़र आता है इसको अगर आप कंपेयर करें जो आपने 60 की दहाई और 50, 60 और 70 की दहाई में जो तलबा की तहरीकें रही हैं, तो आपको फ़र्क कोई नज़र आता है उस वक्त में और आज?
बड़ा फ़र्क तो यही है कि नकी साहब के टाइम पे एक ग्रैंड विजन भी था कि जी हम एक कनेक्टेड हैं, क्योंकि खुद नकी साहब लेफ्ट के उस मूवमेंट के साथ थे, कुछ जो थे वो रुजती कुवतें या आप उन्हें कह रहे हैं मजहबी कुवतें, उनका भी एक विजन था बड़ा क्लियर। अभी जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसके अंदर पॉकेट्स में क्लैरिटी है लेकिन ज़्यादातर इस वक्त रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मिसाल के तौर पर थोड़ी सी हमने बात की जी बलोचिस्तान में सेक्शुअल हरासमेंट का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो
तो रिएक्टिव है, ज़्यादा
रिएक्टिव हैं। उधर पश्तूनों को अगर मार पड़ती है पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके खिलाफ मुजाहरा हो जाता है, कराची यूनिवर्सिटी से कोई बलोच उठाया जाता है उसके खिलाफ। तो इस वक्त तो क्योंकि उस तरह की तंजीमें नहीं हैं जो कि ट्रेनिंग कर सकें जो जो कोई बहुत बड़ा विजन दे सकें, तो एक इमीडिएट लड़ाई ज़्यादा है। इस पे हम बार बार फोकस भी कर रहे हैं, बार बार ये तलकीन भी कर रहे हैं, अब स्टूडेंट लीडर वही फैसला करेंगे क्या करना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मज़ाहमत से निकल के साथ साथ आप कोई एक मुस्बत मुतबादल भी दो। यानी फॉर एग्जांपल हमारा एजुकेशन का क्या विजन है,
बिल्कुल ठीक
ठीक है, स्टूडेंट यूनियंस का स्टूडेंट यूनियन
तो किस किस्म की, उस स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं
करीब जा रहे हैं उस तरफ, ये
जो आपने बात की थी कि नजर आए ना आए लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए।
लेकिन सिंध असेंबली में पास हो गया, पहले लोग कहते थे बिल्कुल नामुमकिन है कोई इस पे बात भी नहीं हो सकती,
यूनियंस की बहाली का बिल
बिल पास हो गया है पंजाब असेंबली में वो लेकर आ रहे हैं, बलोचिस्तान में भी वो कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि देखें ये तो एक बिल्कुल उन्होंने तो वाइप आउट
किया, बिल पास हो गया,
बिल यूनियन का बिल पास हो चुका है सिंध में,
जी
सिंध में भी हो गया है पंजाब में भी होने लगा है। तो ये नामुमकिन, ये कहते हैं जी पॉलिटिक्स जो है आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल है, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है वो तो आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल है कि एक चीज़ है जो आपको सिस्टम ने कहा है नामुमकिन है इम्पॉसिबल है और आप उसको करके दिखाओ, क्योंकि आपके जो हालात हैं वो जो इफेक्ट जो आप नोटिस कर रहे हो जो रुझान बन रहे हैं वो उसी तरफ आपको मजबूर कर रहे हैं। सो हो सकता है किसी को बाहर किसी शख्स को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो कह रहे हैं कि यार हमारे लिए अब बिल्कुल इसको टॉलरेट करना नामुमकिन हो चुका है सूरत हाल को, तो उसमें चांसेस निकल आते हैं। एक और चीज़ अगर 60s के हवाले से 70s के हवाले से मैं कर दूँ अभी के उसमें कि उस वक्त जो महकूम कौमों का और जो प्रोग्रेसिव कोतों का इतिहाद बहुत मजबूत था, नैप भी बाद में बन गई,
ये
उससे पहले जो अभी नकी साहब ने बात की कि बलोच स्टूडेंट्स के लिए आप कर रहे थे मुजाहरा जिसकी वजह से रस्टिकेट हुए, ये रिश्ता तो बिल्कुल ही टूट गया ना, क्योंकि वो पूरा बात होगी कि जो किसी के साथ कोई बंदा पश्तूनों के हक में, बलोचों के हक में बोलता ही है तो वो कहते हैं कि जी ये गद्दार है। लेकिन आई थिंक हमारे नौजवानों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, वो पीटीएम के साथ भी खड़े हुए हैं, वो भी पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी से एक लड़का उठाया गया, उसके लिए पंजाबी लड़कों ने धरना भी दिया, स्टूडेंट लीडर जो नया नया वकील बने हमारे हैदर भट, वो उन्होंने केस भी दायर किया उसको वापस लेकर आए। तो ये चीज़ें वापस आ रही है ये रवायत, और इसी से मेरा ख्याल एक मजबूत एक मुतबादल बन सकता है।
नकी साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा इस सिलसिले में ये है कि आपने ज़िंदगी में तलबा की सियासत, ज़ाहिर है आपने सहाफ़ती सियासत भी की और सियासी अमल को बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन आज का मौजू चूँकि तलबा की सियासत से मुतालिक है, आपने मुझे ये बताइए कि आपने जो एक अपनी ज़िंदगी का पहला जुलूस या हड़ताल या तलबा के हकूक़ के लिए आवाज़ किस वक्त उठाई थी और कहाँ?
पाकिस्तान में
नहीं, मुझे कुछ बचपन का भी कुछ ज़रा बताइए ना।
हमने
पहला जुलूस किस उम्र में निकाला था, क्योंकि आपने तो इतना हमने तलबा तो की सियासत में
हड़ताल कराई थी हमारे शिया कॉलेज में, इब्ने हसन जाटवी प्रिंसिपल थे
और लखनऊ में
जी हिंदू।
आपकी उम्र क्या थी उस वक्त?
उस वक्त होगी कोई 16-17 साल ऐसे कुछ। 36 में मैं पैदा हुआ हूँ,
ठीक,
और 50 तक मैं वहाँ था। और ये
हमारे 14 बरस के होंगे ना फिर?
14-15 बरस ऐसे ही। बहरहाल तो हड़ताल यूं कराई कि इश्तियाक ये जो थे इब्न हसन जाटवी साहब हमारे यहाँ कॉमर्स के क्लासेस शुरू किए शिया कॉलेज में, और बीएससी के क्लासेस भी शुरू हुए। लेकिन बीएससी के क्लासेस में तो गुरबचन सिंह सिद्धू थे जो बाद में इंडिया के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक वो भी रहे चेयरमैन। तो हमारे यहाँ सिख हिंदू सब थे, लेकिन सुन्नी एक टीचर थे और वो कॉमर्स के थे, ताहिर साहब। उनको इन्होंने इब्न हसन जाटवी साहब ने कोई बदतमीज़ी की उनके साथ, वो इनके कमरे से निकले तो वो उनके कुछ आंसू से थे, तो वो किसी लड़के ने देख लिए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग गए उनके पास कि सर क्या हुआ, तो बस वो बेचारे बहुत ही वो थे रस। तो हम लोगों ने कहा कि अब ये बंद है और जब तक इब्न हसन जाटवी माफ़ी नहीं मांगेगा उस वक्त तक
ये बंद करने वाले स्ट्रेटजी भी अच्छी लग रही है, ये भी बड़ा फर्क है।
उसमें फिर हमारे सीनियर स्टूडेंट भी थे नकवी साहब एक अमरोह के, उन लोगों लोग भी सब शामिल हो गए। उनका हाँ ये ठीक है, तो आंसुओं से रो रहे थे इब्न हसन जाटवी।
आपने उन्हें भी नहीं पूछा?
और उन्होंने माफी मांगी,
अल्लाह अल्लाह।
क्योंकि अगर 3 दिन यूपी में ये था कि अगर 3 दिन कोई कॉलेज बंद रहेगा तो प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन कॉल होगा कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ,
तालीम क्यों नहीं दी,
तालीम क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ भी हमारा जो था बारगेन हुआ था इस ये कराची यूनिवर्सिटी में कि इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने पूछा कि अच्छा उन लड़कों को मैं उनका रेस्टिकेशन माफ़ कर दूँ तो आपका कर दूँ? तो मैंने कहा ये भी मुझे मंजूर है, आप यूँ कर दे।
तो वो बलोच स्टूडेंट्स रेस्टिकेट नहीं हुए, बलूचिस्तान से जो आए थे और आप हो गए,
हो गए। अच्छा, वो तो सब वापस रख लिए।
अच्छा, एक ज़िम्नी आखिरी सवाल, क्योंकि हमने बहुत वक्त ले लिया, लेकिन ये कि 1958 से आपका वैसे बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, लेकिन 1958 से 60 जब आप इस्लामिया कॉलेज में यहाँ प्रिंसिपल हुए तो अमीन मुगल वगैरह सब यहीं थे?
अमीन मुगल साहब नए नए आए थे और वो हाँ वो हमें पढ़ा रहे थे ये कंपोजिशन।
अच्छा, नहीं तो यहाँ जब आप सेक्रेटरी हुए यहाँ तो उसी वक्त मार्शल लॉ लगा अयूब का,
एरिक सिप्रियन साहब को वाइस ये जो थे हमीद अहमद खान साहब, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमारे यहाँ भी कॉलेज में यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज सेपरेट हुआ था ग्रेजुएशन आके डीएवी कॉलेज।
आपने बनवा ली यहाँ भी यूनियन?
हम लोगों ने बनवा।
बहुत बहुत शुक्रिया नकी साहब, मैं बहुत ममनून हूँ आपका, शुक्रगुजार हूँ आपने इतना वक्त निकाला, और अमार अली जान आपका भी। और ख्वातीनों हजरात, ये एक लामुतनाही गुफ्तगू हो सकती है नकी साहब के साथ, चूंकि इन्होंने जो हवाले हमें दिए हैं अभी तो आज तो सिर्फ लखनऊ कराची और लाहौर का ही तस्करा हुआ, वो भी पूरा नहीं हो सका, वरना जो दीगर इन्होंने मुल्क में जिस तरह से इंसानी हकूक की तहरीक को मुनज़्ज़म करने में जो किरदार अदा किया है वो बेमिसाल है, बेनज़ीर है। अम्मार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने भी वक्त निकाला और कुछ उम्मीद बंधाई, और मैं समझता ये हूँ कि किसी और प्रोग्राम में हम जो पाकिस्तान में, चूंकि आज माहौल ऐसा था कि हमने बाएं बाजू के अदसे से या ज़रा लिबरल प्रोग्रेसिव अदसे से जो इंसानी हकूक़ की और तलबा के हकूक़ की सियासत हुई है उस पर नज़र डाली है, हम ये भी देखना चाहेंगे इसी प्रोग्राम पॉडकास्ट की किसी और कड़ी में कि दाएं बाजू की सियासत पाकिस्तान में तलबा की कैसी रही है और उनका इन मामलात के बारे में इस वक्त क्या तज्जिया है। मैं आप दोनों मेहमानान का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन हजरात।
पाकिस्तान की आजादी के 75 साल, इस मौके पर वीओए उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियां और गुफ्तगू ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनाव के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ते नजर और फिक्रंगेज ख्यालात। इस तारीखी मौके पर वीओए उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे पाकिस्तान में गैर मुनाफा बख्श और शहरी तंजीमों ने माशरे की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है।